दिन भर एक सितंबर रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना।
GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य तिलक देवेश्वर से जानेंगे 370 के निष्प्रभावी होने के बाद कश्मीर में क्या कुछ बदला है उनकी नजर में।
फंडामेंटल चेंज ये हुआ है कि अब भारत सरकार ने कहा कि ये फुली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया है।
और ढेर सारे यादगार नगमे देने वाले गीतकार शैलेंद्र को याद करते हुए सुनाएंगे उनकी बेटी से विशेष बातचीत।
पान खाई सैया हमारो फ्रॉम तीसरी कसम, उसे तो ऑल इंडिया रेडियो ने बैन भी कर दिया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार भूमिका राय से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत पर चिंता जताई है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के चौतरफा कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था मंदी में है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगी। मनमोहन सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था की यह स्थिति सरकार की गलतियों की वजह से है। 2 दिन पूर्व ही सरकार ने डेटा जारी किया था जिसमें भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वर्ष 2019-20 की तिमाही में बीते वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमजोर रहा है। पाकिस्तान की ईसाई महिला आसिया बीबी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील की है कि वो उनके जैसे पीड़ितों की स्थिति को नज़रअंदाज ना करें। आसिया बीबी ने कुछ समय पहले ईश निंदा के आरोपों से बरी होकर कनाडा में शरण ली है। पैगंबर मोहम्मद के अपमान के आरोप में उन्हें 8 साल मौत की सजा के डर के साए में गुजारने पड़े थे। एक ब्रिटिश अखबार को दिए साक्षात्कार में उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया जिसने उन्हें बरी कर दिया था। आसिया बीबी का कहना है कि ईश निंदा के आरोप में बहुत सारे लोग बिना सबूत के अभी भी जेलों में बंद हैं। उन्होंने ईश निंदा कानून पर फिर से विचार करने की अपील की है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक शहर के हवाई अड्डों के संचालन को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी टर्मिनल इमारत के सामने भारी संख्या में इकट्ठा हो गए जिससे एयरपोर्ट में अंदर जाने वाले यात्रियों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी भी दी कि उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। एयरपोर्ट तक जाने वाली मेट्रो सेवा को निलंबित कर दिया गया क्योंकि ट्रैक पर प्रदर्शनकारी सामान फेंकने लगे। एयरपोर्ट को जाने वाली सभी सड़कों पर जाम की स्थिति के बीच यात्री पैदल ही टर्मिनल की ओर जाते देखे गए। एक विमान यात्री सूजी कोगलन कहती हैं,
I think protesters have the right to protest what they want to as long as it's peaceful and civil and doesn't infract.
मुझे लगता है कि प्रदर्शनकारियों को पूरा अधिकार है कि वे अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो और किसी दूसरे के अधिकार को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन मुझे लगता है कि एयरपोर्ट प्रशासन बेहतरीन काम कर रहा है। विमान यात्री सूजी के शब्द। अमेरिका के टेक्सास में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक महीने के अंदर मास शूटिंग की ये दूसरी बड़ी घटना है। जिस पुलिसकर्मी ने संदिग्ध की कार को रोकने की कोशिश की उसे सबसे पहले गोली लगी। पुलिस की गोली से संदिग्ध की मौत हो गई। आम दिनों की तरह हम ड्राइव पर निकले थे और तभी गोली चलने की आवाज़ सुनी। गोली चलने की कम से कम 10 आवाज़ें आईं। एक गोली मेरी गाड़ी के दरवाजे पर लगी और दूसरी करीब से गुजरी। एक गोली मेरी कलाई में भी लगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम बाल बाल बच गए। ये थे घायलों में से एक लैरी शोर्स के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने पोलैंड से कहा है कि वो नाजी अत्याचार के लिए माफ कर दे। द्वितीय विश्व युद्ध के 80वीं वर्षी पर आयोजित समारोह में उन्होंने ये अपील की। ये आयोजन पोलैंड के विलन कस्बे में हुआ जो उस युद्ध में हवाई बमबारी का शिकार हुआ था। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डुडा ने इस मौके पर कहा,
ये
एक सामान्य दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसे हर सिद्धांत, हर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को ताक पर रखकर नष्ट कर दिया गया। एक संधि पर बर्बरता पूर्वक उल्लंघन किया गया। ये युद्ध अपराध था। विश्व युद्ध की शुरुआत युद्ध अपराध से हुई थी। ये थे पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डुडा के शब्द। यमन के हूती विद्रोहियों का कहना है कि सऊदी के नेतृत्व में गठबंधन फौजों ने एक डिटेंशन सेंटर पर हवाई हमला किया जिसमें 60 कैदियों की मौत हो गई। ये घटना यमन के दक्षिणी शहर धमार की है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का कहना है कि ये हमला उस जगह को निशाना बनाकर किया गया था जहां ड्रोन और मिसाइल रखे गए थे। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 100 अरब डॉलर से अधिक के चीनी सामानों के आयात पर 15% अतिरिक्त शुल्क प्रभावी हो गया है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका के कच्चे तेल पर 5% अतिरिक्त शुल्क लगाया है। 18 महीनों से चल रहे इस व्यापारिक युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है जब तेल पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। अमेरिका स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर ने डोरियन तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि ये तूफान 5वीं श्रेणी का है और बहामास के अबाको आइलैंड से टकराने की ओर बढ़ रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। एक घंटे के इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम में सबसे पहले बात भारत की अर्थव्यवस्था की। आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों से जूझ रही नरेंद्र मोदी सरकार को शुक्रवार को उस समय झटका लगा था जब चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़े सामने आए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून तक भारत की आर्थिक विकास दर घटकर सिर्फ 5% रह गई। अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई है। रविवार को उन्होंने एक वीडियो जारी करके अर्थव्यवस्था की बुरी हालत के लिए मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए बीबीसी संवाददाता संदीप राय की रिपोर्ट।
ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। वो कह रहे हैं कि आज अर्थव्यवस्था बहुत चिंताजनक हालत में है। पिछली तिमाही में 5% की जीडीपी विकास दर इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था लंबी सुस्ती के मझधार में पहुंच गई है। पूर्व प्रधानमंत्री ने आज मौजूदा आर्थिक हालत पर चिंता जताई और सरकार के फैसलों पर सवाल खड़ा किए। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की तीखी आलोचना की है। अर्थव्यवस्था की चिंताओं को सामने लाते हुए मनमोहन सिंह ने टैक्स टेररिज्म का भी नाम लिया और उससे कारोबारियों को होने वाली परेशानियों की ओर ध्यान दिलाया। साथ ही उन्होंने सरकारी संस्थानों की स्वायत्तता को नियंत्रित करने पर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से 2.25 लाख करोड़ रुपये निकालने पर सवाल खड़ा किए। सरकार ने 2 दिन पहले ही डेटा जारी कर जीडीपी की विकास दर को 5% बताया था। मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के लिए मोदी सरकार के चौतरफा कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ इज टॉटरिंग एट 0.6%।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 0.6% पर है। ये इस बात को साफ करता है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसी इंसानी गलतियों से अभी भी अर्थव्यवस्था उबर नहीं पाई है। घरेलू मांग में कमी है और उपभोग विकास दर 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर है।
पिछले दिनों सरकार ने कुछ कदम उठाए और घोषणाएं की और इससे ऐसा लगता है कि सरकार भी मौजूदा आर्थिक हालात को गंभीरता से लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार उस असंगठित क्षेत्र को लेकर कुछ नहीं कर रही है जिसे नोटबंदी और जीएसटी से सबसे बड़ी चोट पहुंची है। जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि घरेलू मांग में कमी आने की वजह असंगठित क्षेत्र की तबाही है, इसलिए सरकार को इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए।
जब तक आप असंगठित क्षेत्र के लिए पैकेज नहीं देंगे और असंगठित क्षेत्र नहीं बढ़ने लगेगा तब तक ये बात सुधरेगी नहीं। आप पैकेज दे रहे हैं संगठित क्षेत्र के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए दे नहीं रहे। तो ये एक जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारी अर्थव्यवस्था में कि असंगठित क्षेत्र जो 94% जब एम्प्लॉयमेंट देता है और 45% उत्पादन देता है, जब तक वो नहीं बढ़ना शुरू होगा तो सिर्फ संगठित क्षेत्र के आधार पे हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा सकते।
मनमोहन सिंह ने कहा है कि इस सरकार में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री का इशारा जीडीपी के आंकड़ों की ओर था जिस पर खुद प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार ने सवाल खड़ा किए थे और कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीडीपी अनुमान से कहीं कम है। प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि ये जीडीपी 0 से भी नीचे जा चुकी है।
भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है और वो नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है इस समय, लेकिन ये बात मानने को नहीं तैयार है और ये सिर्फ सरकार के आंकड़े को ही रिट्रेट करते रहते हैं।
इन चिंताओं के बीच मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था की गंभीर हालत पर मोदी सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं।
इंडिया कैन नॉट अफोर्ड
लगातार गिरावट जारी रही तो भारत के लिए बहुत मुश्किल स्थिति होगी। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो प्रतिशोध की राजनीति से बाहर आए और सभी की सुने। अर्थव्यवस्था की यह हालत सरकार की गलतियों से बनी है।
कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होना था वो हो चुका है, अब सिर्फ उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। संदीप राय, बीबीसी दिल्ली।
केंद्र सरकार की एक और बात के लिए आलोचना हो रही है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक से 24.8 अरब डॉलर यानी लगभग 1,76 करोड़ रुपए लाभांश और सरप्लस पूंजी के तौर पर लेना। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ये पैसे आरबीआई से जबरदस्ती लिए हैं, मगर सरकार इन आरोपों को गलत बता रही है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार से बात की और पूछा कि सरकार को क्यों ये रकम लेनी पड़ी और विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है कि आरबीआई को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। सुनिए क्या कहना था उनका।
ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें, क्योंकि जितना पैसा उनके पास अभी है आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि आरबीआई हमको अगर 4,00,000 करोड़ रुपए तक दे दे तभी भी ठीक रहेगा, और उसने अपने रिजर्व में से सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए दिए हैं हमें, और जो बाकी 1.2 लाख दिए हैं वो अपने सरप्लस से दिए हैं जो इस साल का सरप्लस है। तो ये कोई भी बातचीत ऐसी कि आरबीआई की ऑटोनॉमी में दखल आया या आरबीआई को किसी तरह से कमज़ोर किया गया, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल बेबुनियाद है, और इसकी जो मदद है वो हमारी फिस्कल डिसिप्लिन को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा होगी।
तो 1.7 खरब रुपीस जो मिल रहे हैं, क्या इसके बाद भी और पैसे मिलेंगे आरबीआई?
अभी तो नहीं मिलेंगे, इसके बाद वो अगले साल जब 2021 का आएगा उसमें मिलेंगे, इस बार तो और नहीं मिलेंगे। और इसमें से ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शायद 90,000 करोड़ बजट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है।
एक जो बात सामने आ रही है कि 70,000 करोड़ जो है वो लिक्विडिटी मार्केट में लाया जाएगा ताकि बैंकिंग सेक्टर में, ताकि वो कर्ज अपने उसको कस्टमर्स को दे सके।
मेरे ख्याल में हो सकता है यही हो, क्योंकि बात यह है कि लोगों का कहना है कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्रेडिट जो डिसबर्समेंट है वो कम हो गया है, और तो उसको बढ़ाने के लिए हमें बैंक्स में जिसको कहते हैं ग्रोथ कैपिटल की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने एनपीएस को एक ठीक से देख सकें और साथ में आगे लोन्स देने की उनमें क्षमता बढ़े।
काफ़ी दिनों से ये बहस चल रही है, पिछले 3-4 हफ्ते से, कि इकॉनमी जो है सुस्त हो गई है रफ्तार इसके ग्रोथ की, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ?
2006 से करीब और 2011 तक जो बेतहाशा बैंक से लोन दिए गए, जो कि ज़्यादातर बड़े बड़े लोन कंपनीज के एनपीएस में वो जो कन्वर्ट हो गए, तो जब ये सरकार आई तो 2014 में 8.5 लाख करोड़ के एनपीएस हमने इन्हेरिट किए, ये बढ़ के 10.5 लाख करोड़ हो गए। तो उसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर की जो क्रेडिट देने की क्षमता है वो करीब करीब ना के बराबर हो गई, और पिछले हम 5 साल से देख रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ बैंक क्रेडिट नॉन फूड सेक्टर के लिए वो धीमी होती जा रही, कम होती जा रही है। एक्सपोर्ट सेक्टर में यकीन जानिए एक्सपोर्टर्स को उनकी ग्रोथ -30% हो गई है, मतलब उस बैंकों ने पैसा वहाँ से खींच लिया है वापस। अभी जो पिछले 5-6 महीने में जो ग्रोथ आई है वो सिर्फ एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है इन सब चीज़ों का एक साथ होने का।
कोई तो ट्रिगर पॉइंट होगा हमारे श्रोताओं को?
मेरे ख्याल में अगर ट्रिगर पॉइंट कोई है तो वो IL FS का जो है वो बेली अप, जिसे कहते हैं कि IL FS का विस्फोट मानिए एक तरह से, वो हो गया, क्योंकि उसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की मान्यता कम हो गई, बैंकों को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को देने की जो थी वो उनमें उनको थोड़ा सा डर लगने लगा। तो मेरे ख्याल में तो ट्रिगर पॉइंट वही है।
क्या ये सरकार कहीं ना कहीं विश्वास को बनाए रखने में विफल रही है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं। और देखिए इसीलिए बहुत जल्दी हमारी सरकार ने अभी जो अनाउंस किया, ये बहुत पहली बार शायद हुआ होगा कि एक बजट के 6 हफ्ते बाद ही, कोई 7 हफ्ते बाद ही, एक फिर से सारे नए सिलसिले से कोई 23-24 कदम कल अभी वित्त मंत्री ने अनाउंस किए। और ये अगर विश्वास की कहीं कमी हुई है तो वो उसी दौरान 2004 से 2011 में,
वो भी तो पता था कि ऐसा हो रहा है, तो कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते थे कि
नहीं उठाए,
उसका ट्रिगर पॉइंट आ सकता है?
नहीं, उठाए गए थे। आपको याद होगा कि 2 साल पहले 2.5 लाख करोड़ हम लोगों ने बैंक्स को दिया था, उनको रिकैपिटलाइज किया था। साथ में ये बात भी है कि हम ये बहुत बड़ी कोशिश है कि हमारी इकॉनमी फॉर्मलाइज हो जाए।
मुझे ऐसा लग रहा है कि रिएक्शनरी कदम उठाती है सरकार,
नहीं
एक्शन के बजाय रिएक्शन करती
है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे रिफॉर्म जो पिछले 5 साल में किए वो सारे पॉजिटिव ही थे, मतलब प्रोएक्टिव रिफॉर्म से जो किए गए।
उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो छोटे निवेशक हैं जिन्होंने बहुत सारे शेयर्स खरीदे हुए हैं कंपनियों में, उनका जो इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा है वो घबराए हुए हैं?
नहीं देखिए, ये बाज़ार की ऊंच नीच चलती रहती है और जो निवेशक जो उसमें निवेश करते हैं वो मेरे ख्याल में इसमें उनको थोड़ी सी आदत भी होगी। ज़्यादातर मेरा जैसा मध्यम वर्गीय आदमी तो म्यूचुअल फंड के थ्रू, मतलब वो जो फंड्स हैं उन्हीं के थ्रू करता है, अलग से कंपनी में नहीं लगाता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप किसी से भी पूरी दुनिया में पूछें तो वो यही कहेगा कि हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट तो आगे बढ़ेगी ही।
प्राइवेट सेक्टर इतना वाइब्रेंट सेक्टर इंडिया में माना जा रहा है कि बहुत हो चुका है, इनका योगदान कितना है इकॉनमी को रीबिल्ड करने में?
पहली बात तो ये कि ये हमको मान के ही चलना चाहिए, और उसको प्रधानमंत्री ने भी बहुत साफ साफ कहा है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था में इकॉनमी में अगर गति आनी है तो वो प्राइवेट एंटरप्राइज से ही आनी है। दूसरी बात यह है कि कुछ आदत पड़ गई है सरकार से मदद मांगने की, और वो एक पुरानी चीज़ चली आ रही है, और उसकी वजह शायद ये भी कुछ हो सकती है कि हमारे जो अर्थव्यवस्था में हमारी इकॉनमी में एक पब्लिक सेक्टर का रोल भी थोड़ा ज़्यादा रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमने अभी तक जो छोटे और मझोले,
ये थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, जो कह रहे थे कि RBI की स्वायत्तता में सरकार ने किसी तरह का दखल नहीं दिया है। मॉनसून सीजन में भारी बारिश के कारण देश के अलग अलग इलाकों से बाढ़ की खबरें तो अब कम हुई हैं, मगर मध्य प्रदेश में एक नया संकट उठ खड़ा हुआ है। नर्मदा नदी पर गुजरात में बने सरदार सरोवर बांध के पानी का स्तर 133 मीटर पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से लगभग 6 मीटर ऊपर है। हालत ये हो गई है कि कुछ गांवों में खेती वाली काफी जमीन, हजारों पेड़ और लगभग 30,000 लोगों के मकान पानी में डूब गए हैं। BBC गुजराती सेवा के संवाददाता तेजस वैद्य प्रभावित इलाके में हैं। कुछ देर पहले मैंने उनसे बातचीत की और जानना चाहा कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई और अभी हालात कैसे हैं।
देखिए, ये जो सरदार सरोवर डैम का जो बांध है वहाँ पे 134 मीटर से फिलहाल पानी जा रहा है, और उसका जो बैक वाटर है वो मध्य प्रदेश के कई गांवों में चला गया है, और इसके खिलाफ मेधा पाटकर और दूसरे कई लोग अनशन पर बैठे हैं। आज अनशन का 8वां दिन है। उनका कहना है कि इससे 194 जो गांव है वो डूब में जा रहे हैं ये नर्मदा के बैक वाटर की वजह से। और हमने तकरीबन 2-3 गांवों का जायजा भी लिया, जैसे कि हम लीसरपुर गांव गए थे, उसके बाद में राजघाट कुकरा गांव गए थे, तो ये जो पूरे गांव है वो पानी से लबालब हो गए हैं। वो गांव गांव नहीं रहे हैं, तालाब बन गए हैं, और वहां पे मतलब नौकाएं चल रही है, नाव चल रही है, लोग अपने मकान छोड़ के चले गए हैं, उनका जो कारोबार था दुकान वो छोड़ के चले गए हैं, यहाँ तक कि जो खेत खलिहान है उसमें भी मतलब 15-15 फुट पानी चला गया है। तो और एक मतलब कुछ गांव तो ऐसे है, जैसे कि राजगढ़ कुकरा गांव है, वो तो पूरा टापू बन गया है, मतलब वो गांव का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पे ही पानी नहीं गया है, और वहां पे कुछ घर बचे हुए हैं, तो बाकी का गांव के पूरे चारों ओर जो है वो पानी फैल गया है, और गांव में नौकाएं चल रही है। और जैसे कि राजगढ़ कुकरा गांव में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बात यह है कि अगर ये बांध की ऊंचाई अभी जो 134 मीटर से पानी जा रहा है, अगर वो और भी ऊंचाई से मतलब कि 139 मीटर तक ले जाने की बात है, अगर 139 मीटर से पानी जाता है तो ये गांवों की हालात जो है वो और भी मतलब कठिनाई भरी हो जाएगी।
जी, तो जब इतने खराब हालात हो गए हैं तो प्रशासन का क्या कहना है? क्या आपको कोई वहां पे लोग दिखे राहत बचाव कार्य करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, या किसी अधिकारी ने ऐसा कहा हो कि इस स्थिति से निपटने के लिए वो क्या कर रहे हो?
हाँ जी, हम गए थे निसरपुर गांव में, तो वहाँ के जो SDM है, जो मतलब अधिकारी है, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे निगरानी में 26 गांव आते हैं जो कि पानी से लबालब है, तो हमने उनको पुनर्वास दिया हुआ है, तो वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो मतलब हमने हमारी ओर से पुख्ता इंतजाम किए हैं कि लोग ये जो तालाब बन गए गाँव वहाँ से निकल के वहाँ पे अच्छी तरह से रह पाए, कुछ लोग गए हैं और कुछ लोग नहीं गए हैं। तो हमने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं जाते, तो उनका कहना है कि वहाँ के हमें जो आवास, जो वैकल्पिक आवास दिए गए हैं वो टीन के शेड्स है, तो वहाँ पर रहना काफी मुश्किल है। एक तो वहाँ पर गर्मी बहुत हो रही है और छोटे छोटे मतलब कमरे हैं, तो वहाँ पर रहना काफी मतलब मुश्किल हो रहा है।
तेजस, क्या ये बांध का पानी इतना ऊपर बढ़ा, क्या पानी को छोड़ने की या कुछ ऐसी बात हो रही है?
जो गुजरात सरकार है वो चाहती है कि 134 मीटर, ये अब तक की सबसे ऊंचाई से पानी जा रहा है, वो चाहते हैं कि जो पानी है वो और भी ऊंचाई से जाए, 139 मीटर की ऊंचाई से जाए। तो उससे जो मतलब बिजली प्रबंधन है, और उनका ये भी कहना है कि जो बाकी के दिनों में पानी की किल्लत गुजरात के गांव में पड़ती है, तो वो पानी हमारे पास अच्छा रहे तो वो नहीं होगी। तो उनका कहना है कि वो मतलब एक ताबड़तोड़ पानी नहीं छोड़ सकते हैं, एक ये भी वजह है।
बीबीसी संवाददाता तेजस वैद्य बता रहे थे कि पानी भरने से किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। इसी समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के छोटा बड़दा में 25 अगस्त से हड़ताल पर हैं। मेधा पाटकर के साथ बांध के कारण पानी भरने से प्रभावित कुछ इलाकों के ग्रामीण भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज मेधा पाटकर की हड़ताल का 8वां दिन है। शनिवार को उनकी तबीयत खराब होने पर ORS देने की कोशिश की गई थी, जो कि नाकाम रही। बीबीसी संवाददाता तेजस वैद्य ने उनसे बात की और पूछा कि वो किन मांगों को लेकर अनशन कर रही हैं।
पुनर्वसन होने तक पानी नहीं भरना है। अभी जो 134 मीटर तक पानी भरा है उससे यहाँ तो बहुत ही भयावह नजारा हुआ है। गांव-गांव में पानी घुसा है, फिर कई सारे गांव की जमीनें टापू बन गई है जो भू अर्जित नहीं है, ऐसा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। और गाँव में जो लोग रह रहे हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जिनको कि पानी भरने पर जबरन हटाया गया पानी और पुलिस बल से, उनका पुनर्वास नहीं हुआ। जितेंद्र कहार यहाँ बैठा है, इनके 17 घरों को जबरन कैसे हटाया गया आप पूछिए। 6 दिन की और 15 दिन की बच्चियाँ थी, खाना तैयार था वो खाने भी नहीं दिया। अभी जहाँ पटका है उनको पुनर्वास स्थल पर आंगनबाड़ी भवन, वहाँ न बिजली दी न खाना समय पर दे रहे। यहाँ वो भुवन सिंह जी बैठे हैं, राजघाट में 2 मौतें हुई बिजली के करंट से, सर्पदंश हो रहा है गांव-गांव में। पहाड़ी में तो बहुत ही खराब हालत है, वहाँ डूब क्षेत्र में कम लोग हैं, पुनर्वास स्थल में भी लोगों को लड़ना पड़ रहा है।
आप जलाशय में 139 मीटर तक पानी भरने का विरोध तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया, और आप मध्य प्रदेश में ही अनशन पर बैठी है सरकार के।
ऐसा है, उन्होंने विरोध करते समय जो आंकड़े दिए हैं वो सही नहीं। उन्होंने कहा कि 76 गांव, 6000 परिवार, ये तो एक ही जिले के आंकड़े हैं, धार जिले। और उन्होंने जिस स्तर पर ये मुद्दा उठाना चाहिए इतना गंभीर, वो नहीं उठाया। इसी कांग्रेस पार्टी ने जब 2017 में सभी विधायकों ने गिरफ्तारी दी थी हमारे अनशन के दौरान, वो यहाँ आकर बड़वानी में आम सभा कर चुके थे, और आज वो रास्ते पर उतरना छोड़ो, कागज़ पर भी नहीं बोल रहे हैं, ये क्यों? और हठधर्मिता इतनी है कि गुजरात के जलाशय तो भर गए हैं इस बार, एक साल आगे ढकेलना गुजरात के लिए कोई असंभव नहीं है।
लेकिन मेधा जी, आप इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कि काठियावाड़ कच्छ बिल्कुल सूखे इलाके हैं, तो वहाँ पर तो जो पानी है वो नर्मदा सरदार सरोवर के डैम के जरिए ही पहुँच सकता है। तो आप जिस संवेदना की बात यहाँ दिखा रही है वो उनके लोगों की भी वही संवेदना है सूखे के दिनों में, तो फिर मतलब उसको इस तरह से क्यों देखा जा रहा है कि ये गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों की लड़ाई है और इसमें जो संवेदनशील मुद्दा है वो साइड में रह जाता है?
ये बात गलत है। काठियावाड़, कच्छ और उत्तर गुजरात के नाम पर इस बांध को आगे ढकेला गया और 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए,
लेकिन
नहीं, ये राजधारणा है, लोगों की धारणा बनाई जाती है। लेकिन आज तो सौराष्ट्र के कच्छ के लोग हमारे साथ हैं।
एक आखिरी सवाल, कि नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया था कि 134 मीटर और फोटो रखे थे और उन्होंने कहा, लोगों को आह्वान किया था कि आप आके देखिए, उसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे?
यही कहना चाहते हैं कि उनकी नज़र हमारे से बहुत अलग है। जिन लोगों को नज़ारा देखना ही है तो वहाँ का सुंदर नज़ारा ही नहीं पर्यटन का, पर यहाँ का विस्थापन का नज़ारा देखना चाहिए। और जो ये देखेंगे निश्चित रूप से ये मानेंगे कि मोदी जी अमानवीय रूप से पेश आ रहे हैं इस मुद्दे पर।
ये थीं सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, जो बता रही थीं कि डूब क्षेत्र में रहने वालों को कहीं और बसाए बिना ही सरदार सरोवर बांध में पानी का स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि गलत है। बात असम की। बीते शनिवार को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC की फाइनल लिस्ट आने के बाद से उन लोगों में निराशा और डर का माहौल देखने को मिल रहा है जिनके नाम इसमें दर्ज नहीं हुए हैं। इस सूची में 19 लाख से अधिक लोगों को बाहर रखा गया है। NRC तैयार करने वाले नोडल अधिकारी के अनुसार ये लोग अपनी नागरिकता से जुड़े जरूरी कागजात जमा नहीं करवा सके। इस तरह बड़ी तादाद में गोरखा समुदाय के लोगों का नाम भी NRC में दर्ज नहीं किया गया। ऐसे माहौल में सत्तारूढ़ भाजपा भी NRC की इस फाइनल लिस्ट पर सवाल उठा रही है। सुनिए गुवाहाटी से हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बार उनसे मिलने गए असम गोरखा सम्मेलन के प्रतिनिधियों से फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ के प्रसिद्ध अवलोकन के हवाले से कहा था कि अगर कोई आदमी मरने से नहीं डरता है तो वह झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। एक तरफ जहां सरकार के लोग गोरखाओं के सम्मान में ऐसी बातें करते हैं, वहीं असम में हजारों की संख्या में गोरखा लोगों का नाम NRC की फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया है। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने NRC की लिस्ट में नाम दर्ज नहीं करा पाए लोगों से घबराने के लिए मना किया है, लेकिन विदेशी ट्रिब्यूनल के कामकाज से वाकिफ लोग बेहद निराश और चिंता में हैं, क्योंकि NRC की फाइनल लिस्ट से बाहर हुए लोगों को अब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। असम में बरसों से रह रहे गोरखा समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार से NRC में गोरखाओं को शामिल करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील की थी, लेकिन बावजूद इसके सैकड़ों लोगों का नाम NRC में नहीं आया। असम नेपाली साहित्य सभा के महासचिव रुद्र बराल कहते हैं,
हम लोग यहीं का स्थायी लोग है, परमानेंट लोग है। जो डॉक्यूमेंट्स है लोगों का पास, 61 का NRC है, 65 का वोटर लिस्ट है, लैंड डॉक्यूमेंट्स है, इतना सारे चीज होते हुए भी ढेर सारे आदमी का नाम नहीं आया। तो आम सर्टेन एक कंडीशन आ गया, तो अब क्या होगा इसका बात क्या होगा, लोगों का क्या होगा, ये एक डर है। फिर वो लोग का वो ट्रिब्यूनल में फिर जाना होगा, फिर वही डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जो कल दिखाया था, जिसको कल रिजेक्ट किया, क्या करेगा, ऐसा एक माहौल है यहाँ।
दरअसल असम आंदोलन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए हुआ था, लेकिन NRC की अपडेट प्रक्रिया में हिंदी भाषी गोरखा समेत आदिवासी लोग भी उलझ गए। भले ही ये लोग भारत के अन्य राज्यों से आकर यहाँ बसे हैं, लेकिन अपनी नागरिकता साबित करने के लिए इन्हें 24 मार्च 1971 से पहले के कागजात दिखाने होंगे। गोरखा समुदाय के लोगों के समक्ष उत्पन्न हुई इस परेशानी पर भारतीय गोरखा परिषद के अध्यक्ष नित्यानंद उपाध्याय ने BBC से कहा,
क्योंकि हम लोग का एक हिसाब है ऑलरेडी की जो डी लगा हुआ है, तो ये डी लगा हुआ है जो वोटर है, क्योंकि वो नहीं आएगा बोल के हमको पता ही है पहले से, उनका तो एक्सक्लूजन हो ही गया स्ट्रेटली। वो करीब 20,000 पर्सन है, तो 20,000 में फैमिली को अगर एक्सक्लूड करते हैं तो एवरेज उसी में से 40-50,000 लोग आ जाएंगे। हमारा जो टाइटल मिसमैच है, टाइटल मिसमैच से भी बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया है। ग्रेजुएट परमिट, हम लोग का गोरखा ज्यादा ग्रेजुएट थे, उन लोग का परमिट थे 1951 से पहले का परमिट भी है, तो वो ग्रेजुएट परमिट किसी किसी जगह जैसे कि कार्बी आलम में एक्सेप्ट नहीं किया गया है।
6 साल लंबे चले आंदोलन और सैकड़ों लोगों की जान के बदले करीब 4 दशक के बाद NRC को लेकर लोगों को इतनी शिकायत क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए राज्य के वरिष्ठ पत्रकार नव ठाकुरिया कहते हैं,
एक प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया रीवेरिफिकेशन, स्क्रूटिनाइज करने के लिए वो टाइम नहीं मिला। वो थोड़ा सा आसाम के लोगों के मन में है कि अच्छी तरह नहीं हुआ है, इसके लिए कोई विदेशी लोगों का नाम इसमें अंदर है और कोई स्वदेशी, कोई इंडिजिनस पीपुल जो है, ट्राइबल है, उसका भी नाम उसमें नहीं है।
NRC से बाहर हुए इन 19 लाख लोगों को अगले 120 दिनों में विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करनी होगी। इस मामले में सरकार भी मदद करेगी और हो सकता है कि हिंदू लोगों की नागरिकता के लिए भाजपा अब नागरिकता संशोधन बिल को जल्द ही राज्यसभा से पास करवा लें। लेकिन ये भी तय है कि NRC का ये मुद्दा असम की राजनीति में आगे कई चुनावों तक जिंदा रहेगा। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का एक घंटे का कार्यक्रम दिन भर, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी एकदम लाइव। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम में आगे बात करेंगे भारत प्रशासित कश्मीर की, जानेंगे कैसे हालात हैं वहां, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य तिलक दिवेशर से जानेंगे कि आखिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के बाद उनकी नजर में क्या बदला है। साथ ही याद करेंगे जाने माने गीतकार शैलेंद्र को, सुनाएंगे उनकी बेटी अमला शैलेंद्र मजूमदार से खास बातचीत। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत पर चिंता जताई है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार के चौतरफा कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था मंदी में है। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होगी। मनमोहन सिंह ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की ये स्थिति सरकार की गलतियों की वजह से है। दो दिन पूर्व ही सरकार ने डेटा जारी किया था जिसमें भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में बीते वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमजोर रहा था। पाकिस्तान की ईसाई महिला आसिया बीबी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील की है कि वो अपने जैसे पीड़ितों की स्थिति को नज़रअंदाज न करें। आसिया बीबी ने कुछ समय पहले ईश निंदा के आरोपों से बरी होकर कनाडा में शरण ली है। अफगानिस्तान में अमरीकी दूत जलमाए खलीलजाद का कहना है कि अमरीका और तालिबान के मध्यस्थ एक ऐतिहासिक समझौता होने के बेहद करीब है। ये समझौता सालों से चली आ रही हिंसा को समाप्त करेगा और शांति के नए द्वार खोलेगा। दोहा में नौवें चरण की बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो आज ही काबुल की यात्रा पर जाएंगे और अफगानिस्तान की सरकार से सलाह मशवरा करेंगे। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह का कहना है कि एक बार जब समझौता कराने वाली टीम सब कुछ तय कर लेगी तब उसके बाद ही सरकार तालिबान के साथ अपनी बात करेगी। हालांकि चरमपंथियों ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक सरकार के हवाई अड्डे के संचालन को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी टर्मिनल इमारत के सामने भारी संख्या में इकट्ठा हुए जिससे एयरपोर्ट में अंदर जाने वाले यात्रियों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी भी दी कि उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। अमेरिका के टेक्सास में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक महीने के अंदर मास शूटिंग की ये दूसरी बड़ी घटना है जिस पुलिसकर्मी ने संदिग्ध की कार को रोकने की कोशिश की थी उसे सबसे पहले गोली लगी। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने पोलैंड से कहा है कि वो नाजी अत्याचार के लिए माफ कर दें। द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं बरसी पर आयोजित समारोह में उन्होंने ये अपील की। ये आयोजन पोलैंड के विलन कस्बे में हुआ जो उस युद्ध में हवाई बमबारी का पहला शिकार हुआ था। यमन के हूती विद्रोहियों का कहना है कि सऊदी के नेतृत्व में गठबंधन फौजों ने एक डिटेंशन सेंटर पर हवाई हमला किया जिसमें 60 कैदियों की मौत हो गई। ये घटना यमन के दक्षिणी शहर धमार की है। बीबीसी समाचार।
श्रोताओं, बीबीसी हिंदी सेवा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर की, जहां 5 अगस्त से कई इलाकों में जो पाबंदियां लगाई गई थीं वे अब भी बरकरार हैं। घाटी के कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों की संख्या कम हुई है मगर हालात अभी भी सामान्य नहीं कहे जा सकते। श्रीनगर शहर में भी कुछ इलाकों में अभी तक पाबंदियां बनी हुई हैं। ताज़ा हालात कैसे हैं ये जानने के लिए अभी कुछ देर पहले मैंने बात की श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा से।
आज की अगर हम बात करें कल से लेके अब तक, कल हम साउथ कश्मीर के पुलवामा की तरफ गए थे। पुलवामा में हालात वैसे की वैसे ही है, जो अभी सिक्योरिटी प्रेजेंस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। हम बिजबिहाड़ा गए, हम अवंतीपोरा गए, हम हर उस जगह गए जो मेन टाउन है, उस डिस्ट्रिक्ट के मेन टाउन है, लेकिन हर टाउन में कोई भी सिक्योरिटी की कुछ प्रेजेंस नहीं है। कहीं कहीं पे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के CRPF या पुलिस वाले दिखेंगे, लेकिन एज सच वैसा कोई प्रेजेंस नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पे है नहीं, उसके साथ साथ कोई भी दुकान खुली नहीं है। ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से मिले, जनरल सेक्रेटरी का ये कहना था कि डर है, लोगों के अंदर डर है। उनका ये भी कहना था कि अभी दो पार्टीज है जो हमें अपनी अपनी साइड झुकाना चाहती है। एक पार्टी है इंडियन गवर्नमेंट जो चाहती है कि हम थक जाएं, दूसरी पार्टी है वो लोग जो प्रो 370 या जो 335A की तरफ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब दोनों लोग, उन दोनों की लड़ाई में हम लोग बीच में फंस गए हैं। जब तक ये दोनों लोग एक टेबल पे ना आके बात करें, तब तक मैं अपने दुकान की चाबी लगा के दुकान नहीं खोलने वाला है। 3 दिन पहले पारेमपोरा में ही, श्रीनगर के एक टाउन में पारेमपोरा में, एक दुकानदार की जो होलसेल के डीलर है, उनने दुकान खोली थी रात के 8:30 बजे। 3 लोग रिवॉल्वर से उनको शूट कर देते हैं, जबकि उनकी बीबी वहीं पे खड़ी थी जो आई विटनेस है उस सब की। तो उस इंसिडेंट से भी डर और ज्यादा फैला हुआ है। आपको हर तरफ दुकानें बंद मिलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, सिर्फ आपको कुछ प्राइवेट गाड़ियां दिखेंगी जो मुलाजिमों के है या जो लोग मजबूरी से कहीं आ जा रहे हैं। आज सुबह सुबह मैं नॉर्थ कश्मीर की ओर गया था, नॉर्थ कश्मीर का भी हाल वैसे का वैसा ही है। डिटेंशन बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, क्योंकि आज मैं कुछ परिवारों से मिला। एक ही गांव की अगर मैं बात करूं, उस गांव में तकरीबन 10 से 15 लोगों को 4 अगस्त से लेके अब तक उनको डिटेन कर लिया गया है। कुछ जगहों पे लैंडलाइंस खोली गई है, जो एरिया सिविल लाइंस है, जो एरिया हमेशा पीसफुल माने जाते हैं, जहाँ प्रोटेस्ट या क्लैशेस नहीं होते हैं। तो इस बार भी गवर्नमेंट थोड़ी कॉशियस है, वो डाउनटाउन से अभी वैसे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हटा रही है। उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस है, डाउनटाउन में रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। लोग घरों से बाहर आ सकते हैं, गाड़ियाँ सड़कों पर चल सकती है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस कम मान्य में लेकिन बनाई रखी गई है, सो दैट अगर कोई भी क्लैश होता है तो उसको उसी टाइम कंट्रोल किया जाए।
घाटी के हालात को लेकर जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा। ये पाबंदियां पिछले महीने की 5 तारीख से शुरू हुई थी, जब भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किया था और राज्य को भी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। हमारे सहयोगी रेहान फजल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य तिलक देवेशर से बात की और पूछा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आपकी नजर में क्या कुछ बदला है।
देखिए, एक सतह पर तो फंडामेंटल चेंज है। फंडामेंटल चेंज किस लिए? इसलिए कि एक तो रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 2 हिस्सों में हो गया, जम्मू कश्मीर एक हो गया, लद्दाख एक हो गया। दूसरा, जो स्पेशल स्टेटस का जो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट था कि ये स्टेट हिंदुस्तान का वाहिद स्टेट था जो पूरी तरह से, लोग समझते हैं, पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुआ है। और जो भी पॉलिटिशियंस थे वो हमेशा ये 370 को करते थे आगे कि हम हिंदुस्तान का अभी पूरा हिस्सा नहीं है, हमारा फ्यूचर अभी डिसाइड होना बाकी है। तो फंडामेंटल चेंज ये हुआ है कि अब भारत सरकार ने कहा कि ये फुल्ली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया है।
लेकिन आप समझते हैं कि ये जो कोशिश, ये जो अभी फैसला हुआ है, इससे पहले कभी किसी भारत सरकार ने नहीं सोचा कि ये भी एक ऑप्शन है?
बिल्कुल सोचा, क्योंकि तभी तो रखा टेम्पररी, तभी आर्टिकल 370 टेम्पररी था। टेम्पररी का मतलब कि भी ये किसी वक्त निकल जाएगा, बट किसी ने ये कदम नहीं लिया कि टेम्पररी को टेम्पररी ट्रीट करके इसको खत्म कर दें।
लेकिन आप, चूंकि कश्मीर पे, पाकिस्तान पे आपकी नजर है, भारत में बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स हुई हैं, इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी थे, नरसिम्हा राव थे, पॉलिटिकल लीडरशिप में कहीं ये ध्यान आया कि ये जो नरेंद्र मोदी ने अभी किया है वो लोग इसको सीरियसली सोच रहे थे किसी स्टेज पर?
आई एम श्योर सोच तो रहे होंगे, मगर सब ने ये ही, मुझे लगता है अगर मैं कह सकूं, कि एक चीज जो चल रही है उसको चलने दें, क्यों इसको मिडल राउंड करें, वो चल रही है उसको चलने दें। मगर मेरे ख्याल इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भी अगर हम एक तरफ से चल रहे हैं और एक तरफ से वहाँ 70 साल से मसला बना हुआ है तो ट्राई समथिंग डिफरेंट। और ये तो उनका मंशूर है, उनके मैनिफेस्टो में ये दिया हुआ है 2014 से, उसके पहले से भी, कि ये आर्टिकल, उनकी ये सोच है कि 370 के कारण ही लोगों का फुल इंटीग्रेशन या हार्ट्स एंड माइंड्स का नहीं है। क्योंकि अगर मैं समझूं कि मैं अलग हूं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, तो मैं अपने आप को अलग ही समझूंगा।
लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के मेथड अपनाकर या इस तरह की चीज करके क्या आप कश्मीरियों को अपने फोल्ड में कर लेंगे?
नहीं, ये तो पहला कदम है ना, दिस इज द डिसाइसिव कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता था ना। अब तो पहला ये कदम लिया है एंड आई थिंक वेरी डिफिकल्ट, और पॉलिटिकल लीडरशिप ने कदम लिया, तो एक तो ये तो हो गया। अब दूसरा कदम ये है कि हाउ डू यू विन द कश्मीरीज, जो कश्मीरी जो वैली के जो लोग हैं उनको आप ये कैसा कॉन्फिडेंस में लेकर उनको अश्योरेंस देंगे कि दिस इज फॉर देयर बेनिफिट। क्योंकि कई लोग होंगे उनकी जो टांग खींचेंगे कि भाई तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ वो हो गया, बट कई लोग ये भी सोचते हैं कि इतनी देर से जो प्रॉब्लम चल रही है ये इसकी वजह से था, तो लेट अस गिव दिस आल्सो अ चांस। तो ये मुझे लगता है अब ये जो दूसरी स्टेप है गवर्नेंस इश्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बेनिफिट्स अभी तक भारत सरकार दे रही थी कश्मीर में, वो लोगों की तरफ इतनी तरफ से जा नहीं जा सके, अब वो जाएंगे।
लेकिन जो पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म है, जिस तरह से वहाँ गैग ऑर्डर्स हैं, इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है पूरी दुनिया में कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है, आप किस तरह से इसको काउंटर करेंगे?
नहीं देखिए, वो तो भारत सरकार खुद मान रही है कि हाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो तो खुद कह रही है रिस्ट्रिक्शन लगाए। सुप्रीम कोर्ट में भी गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सरकार को टाइम मिलना चाहिए टू स्टेबलाइज द सिचुएशन। तो ये इसका मना तो नहीं कर रहे कि भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं और कल को वायलेंस होता है और कुछ लोग मारे जाते हैं, फिर भी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म होगा। तो बेहतर क्या है कि अब देखिए 5 अगस्त से जब ये हुआ है आज तक जो 3 लोग शायद मरे हैं, वो मिलिटेंट्स की वजह से मरे हैं, स्टोन पेल्टिंग की वजह से मरे हैं, कोई वायलेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के वायलेंस से तो नहीं मरा ना। तो ये एक बड़ी आई थिंक अचीवमेंट है। हाँ, भारत सरकार ऑल्सो फील्स, सब लोग समझते हैं कि भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए और इंडेफिनेटली नहीं हो सकते। कोई नहीं चाहता, किसी का केस नहीं है कि ये कश्मीरियों को ऐसे ही रखेंगे, मगर जो सरकार है वहाँ पे वो जो समझती है कि सही मौका है, और ग्रेजुअली कई रिस्ट्रिक्शन तो हटा दी गई हैं, जैसे स्कूल्स खुले हैं, ट्रैफिक है, और सिर्फ 144 है, कर्फ्यू नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आस्ते आस्ते करके उनको मौके को देखकर, तो आई थिंक किसी भी देश में पहली प्रायोरिटी क्या है सरकार की, लोगों की हिफाजत, जान और माल की हिफाजत, लॉ एंड ऑर्डर, वो मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने किया। तो जो क्रिटिसिज्म है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है। हम
ये थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य तिलक देवेशर, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी रिहान फजल। ढेर सारे यादगार नगमे देकर सिर्फ 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले गीतकार शैलेंद्र आज जिंदा होते तो 96 साल के होते। मेरा जूता है जापानी, सजन रे झूठ मत बोलो और गाता रहे मेरा दिल, ऐसे ही कई सारे गाने उनके जाने के 53 साल बाद भी लोगों की जबान पर हैं। 30 अगस्त को शैलेंद्र का जन्मदिन था। उनकी बेटी अमला शैलेंद्र मजूमदार हाल ही में बीबीसी हिंदी के स्टूडियो में आई, जहां हमारी सहयोगी इंदु पांडे से बात करते हुए उन्होंने अपने पिता से जुड़ी कई सारी यादें साझा की।
खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी।
जिंदगी का शायद ही कोई रंग या फलसफा होगा जो शैलेंद्र के गीतों में ना मिलता हो। इस हफ्ते हम मनाएंगे उन्हीं का जन्मदिन जो होता है 30 अगस्त को। तो इसी सिलसिले में हमारी खास बातचीत हुई शैलेंद्र की बेटी अमला शैलेंद्र मजूमदार, जिन्होंने अपनी यादों का पिटारा स्टार ऑफ द वीक के लिए खोला। तो सबसे पहले अमला जी, यही बताइए कि शैलेंद्र नाम उनका कैसे पड़ा?
ये तो बाबा का एक पेन नेम है। बाबा का नाम एक्चुअली शंकरदास केसरी लाल है, और शैलेंद्र जब वो गाना फिल्मों में गाना लिखने लगे तब उन्होंने ये नाम अडॉप्ट किया था शैलेंद्र। जब ये बरसात फिल्म में आए हैं तब से दैट वाज द बर्थ ऑफ द नेम एंड द बर्थ ऑफ हिज करियर इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री।
और वो साल था 1949 जब फिल्म बरसात से संगीतकार शंकर जयकिशन की धुन पर शैलेंद्र ने गीत लिखे। शैलेंद्र की बेटी अमला जी ने घर के माहौल की तस्वीर कुछ इस तरह से पेश की।
हमारे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तब किराएदार थे, इरिटेट करते थे हम लोगों को, उनको पसंद नहीं था इतने फिल्मी लोग, हस्तियां आ रही हैं जा रही हैं, यू नो। एक बार जब ये शंकर शंभू का प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने अपनी आलाप शुरू करी, वो जो, तो वो नीचे वालों ने जाके पुलिस में कंप्लेंट करी कि ये किसी का मर्डर हो रहा है, वो आदमी बेचारा चिल्ला रहा है बचाने के। तो पुलिस आई घर में और देखा तो बाबा ने कहा क्या हुआ? सिंह, किसका मर्डर हो रहा है? सिंह, व्हाट मर्डर? यहाँ तो महफिल सजी हुई है, पीपल आर एंजॉयिंग द म्यूजिक। और फिर उन्होंने चुपचाप से बोला चलो नॉइस कम रखें, और वो चले गए चुपचाप।
दरअसल शैलेंद्र के गीतों की ना खासियत ही यही है कि हर कोई इन गीतों में खुद को महसूस करता है। ऐसा लगता है कि मानो ये गीत उसी के लिए लिखे गए हों। वक्त हो या मौसम हो, बचपन हो, जवानी हो, गम हो या फिर खुशी हो, जीवन के हर रंग में शैलेंद्र के गीत आज भी हम सबका साथ देते हैं। फिल्म में किसी खास सिचुएशन पर लिखना, इसके ऊपर शैलेंद्र को ना महारत हासिल थी ऐसा माना जाता है।
इंटेलिजेंट एंड क्लेवर पर्सन, उनकी समझ जो थी वो समझ लेते, सिचुएशन को समझ लेते थे, लेकिन उनका जो गीत होता था, उनके जो लिरिक्स होते थे, सिचुएशन के बाहर आसानी से निकल आते थे। जैसे अगर हम देखें इन छोटे नवाब, एक गाना है, महमूद गा रहे हैं अपने पिताजी के लिए, इलाही तो सुन ले हमारी दुआ, हमें सिर्फ एक आसरा है तेरा, तेरी रहमतें राह रोशन करें, सलामत रहे साया माँ बाप का, एंड इट इज़ ही प्रेइंग फॉर हिज फादर हु इज़ ऑन हिज डेथ बेड। सोचिए, हमने तो वो गाना सुन सुन के हम कितना रोए, इलाही तो सुन ले हमारी दुआ, हमारे यू नो आई फील समटाइम्स कि वो गाना हमारे लिए लिखा था क्या बाबा ने।
और वो शैलेंद्र के सरल बोल ही थे जो आम लोगों की जबान पर चढ़े तो फिर कभी नहीं उतरे।
बाबा के गानों में तो यू डोंट नीड टू रिफर टू एनी बुक, इवन द डीपेस्ट ऑफ थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स।
और शैलेंद्र को फिल्मी दुनिया में लाने का श्रेय राज कपूर को ही जाता है, जिनके बारे में अमला शैलेंद्र मौजूमदार का कहना है,
वो बॉन्डिंग इस तरह की थी कि हम आई जस्ट थिंक बैक कि रात में रात बिरा 12-1 बजे घर का दरवाजा टप 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 टप, राज अंकल खड़े हैं और बाबा को नींद से उठा के और फिर गले से लगा के, कविराज, पुष्किन, जो भी उनका नाम, उनको स्पेशल नेम्स देते थे, उन नामों से पुकार के बधाई देते थे कि ये गाना क्या लिखा है, ये क्या। इट वॉज सच अ वंडरफुल वंडरफुल फ्रेंडशिप। और ये लोगों का जो कहना है कि तीसरी कसम के टाइम पे राज अंकल ने डेट्स नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उनकी वजह से, इट्स ऑल रॉन्ग।
फिल्म तीसरी कसम के बिना शैलेंद्र की बात अधूरी है, क्योंकि यही वो फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तो कई लोगों के दिल टूट गए। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद ये फिल्म बहुत चली और मुंबई दूरदर्शन ने पहली पिक्चर तीसरी कसम ही दिखाई थी।
आपने अगर सुना है पान खाए सैया हमारो फ्रॉम तीसरी कसम, उसे तो ऑल इंडिया रेडियो ने बैन भी कर दिया था और बाबा बहुत उदास हुए थे उस बात को लेकर कि हाउ कैन दे बैन सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और सच में वो गाना कितना खूबसूरत, कितना अच्छा गाना है। कई साल बाद दे मस्ट हैव लिफ्टेड इट, अब तो सुनाई देता है। बाबा के गुजर जाने के बाद तो राज अंकल और मुकेश अंकल ने ही सब फाइनेंसेस संभाले थे। राज अंकल के कहने पर हमारा घर जो था रिमछे वॉज पुट इन मुकेश अंकल्स नेम सो दैट द क्रेडिटर्स कुड नॉट क्लेम, सो ही इट वॉज मॉर्गेज टू मुकेश अंकल, इट वॉज ऑन पेपर इट वॉज मॉर्गेज टू मुकेश अंकल, सो दैट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रेडिटर्स जिन्होंने, जिनसे बाबा ने पैसे लिए थे तीसरी कसम बनाने के लिए, वो नहीं आके घर ना हड़प ले। इस तरह इतना तक राज अंकल और मुकेश अंकल ने हेल्प किया और बाद में ऑफकोर्स गिव इट बैक।
और यहाँ पे इस बात का जिक्र जरूर हम करेंगे कि शैलेंद्र ने एसडी बर्मन के साथ कई फिल्मों के गीत लिखे, लेकिन गाइड एक ऐसी फिल्म थी जिसके गीत अमर हो गए। फिल्म अनाड़ी का गाना तो आपने जरूर सुना होगा कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, जो कि शैलेंद्र के व्यक्तित्व से मेल खाता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शैलेंद्र के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता।
दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा।
सीधी सरल बात कहने वाले जादूगर थे शब्दों के माध्यम से शैलेंद्र। शैलेंद्र की बेटी अमला का कहना है उनके गीतों को लेकर के,
मधुमती के गाने तो एक से एक। और अगर बाबा के का वो फोर्टे देखा जाए कि ही वाज एन आर्टिस्ट, ही वाज अ राइटर, बट ही वाज मोर लाइक अ पेंटर, यू नो, फ्रॉम हिज विथ हिज वर्ड्स ही वुड पेंट पिक्चर्स। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, कभी पहाड़ियों में जाके बादलों के बीच देखो तो यू विल एक्सपीरियंस दोज लाइंस।
और भला कैसे भुलाया जा सकता है उस गाने को आवारा हूँ, जिसने भारत की सरहदों को पार करके रूस की जनता की जुबान पर अपना रंग जमाया।
आवारा हूँ
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ।
वो शैलेंद्र थे जिनके गीतों में ग्रामीण परिवेश, उनकी भाषा, वहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू को हमेशा महसूस किया जा सकता है।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे
गीतकार शैलेंद्र को याद कर रही थी उनकी बेटी अमला शैलेंद्र मजूमदार। और आइए अब हमारे सहयोगी अनंत प्रकाश से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आज क्या कुछ चर्चा में रहा।
आदर्श जी, आज सोशल मीडिया पर सुबह से अर्थव्यवस्था का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज रविवार को कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल के जरिए अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालातों पर अपनी बात रखी।
जी,
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय जिस दौर से गुजर रही है, इससे आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं मिलते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर डॉक्टर सिंह के इस बयान पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इस बयान के आने के बाद मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, वहीं कुछ लोगों ने इस मौके पर यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान हुए कथित घोटालों के ऊपर बात की। बीबीसी हिंदी ने भी अपने पाठकों से इस बयान पर उनकी राय मांगी। इसके जवाब में हमारे पाठक सलीम जावेद तंज कसते हुए लिखते हैं, यदि आपका पैसा म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में डूब गया है, या आपका कारोबार बंद हो गया है, या आपकी नौकरी चली गई है, तो घबराएं नहीं। आपका यह त्याग न्यू इंडिया के निर्माण में आपका बलिदान माना जाएगा, जिसका आपको प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। इसी तरह एक अन्य पाठक पवन कुमार लिखते हैं, इन्हीं के समय दिए गए सबसे ज्यादा लोन और घोटालों का असर आज पूरे देश के सामने है, फिर भी सरकार इससे निजात पाकर दिखाएगी। तो इस तरह की कई अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर और फेसबुक पर हमें आज देखने को मिली।
जी, राजनीतिक टीका टिप्पणी और इस तरह के कमेंट्स के अलावा भी कुछ और जो हल्का फुल्का या कुछ और जो सुर्खियों में रहा हो या ट्रेंड्स में रहा हो?
जी आदर्श, आज दुष्यंत कुमार की जयंती है और वो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने सत्ता और सरकार के खिलाफ अपनी कलम के जरिए आवाज़ उठाने वाले कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई। दुष्यंत ने अपनी कविताओं में इंदिरा गांधी सरकार से लेकर अपने दौर की तमाम ताकतों के खिलाफ अपना विरोध जताया था। इस मौके पर हमने अपने कुछ पाठकों से पूछा कि उन्हें दुष्यंत की कौन सी कविता याद है। इस पर कई लोगों ने उनकी अलग अलग कविताओं को हमारे साथ साझा किया। कई ऐसी कविताएं थी जिनके बारे में आम लोगों ने नहीं सुना है, तो कई ऐसी कविताएं थी जिनके ऊपर कई फिल्मों में गीत बनाए जा चुके हैं। इनमें से ऐसे ही एक कविता है जिसमें कि सरकार के और सत्ता पक्ष के खिलाफ एक आवाज़ उठाने की एक दुष्यंत की कविता है, जो कि हमारे एक पाठक ज्योतिर्मय एस दशम ने शेयर की है। ये कविता कुछ इस तरह है, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आपने शायद सुनी होगी कविता।
बिल्कुल,
इसी तरह एक अन्य पाठक हमारी साक्षी प्रकाश ने शेयर की है कविता, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आज आपको सुनाता हूँ। ऐसे ही एक हमारे दूसरे यूज़र ने कविता साझा की है, बहुत करीब ना आओ यकीन ना होगा, यह आरजू भी अगर कामयाब हो जाए। राजू राम नाम के एक दूसरे पाठक एक दुष्यंत की कविता साझा करते हैं, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए, लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठकर दूर जाकर बैठ गए।
क्या बात।
अंत में आपको एक वो कविता मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ जो एक ट्विटर यूजर विश्वजीत वसंत राव ने साझा की है। आप इस कविता को पढ़ना चाहेंगे आदर्श?
जी बिल्कुल ज़रूर। मैं फिर जन्म लूँगा, फिर मैं इसी जगह आऊँगा, उचटती निगाहों की भीड़ में अभावों के बीच लोगों की क्षत विक्षत पीठ सहलाऊंगा, लंगड़ा कर चलते हुए पाँवों को कंधा दूंगा, गिरी हुई पदमर्दित पराजित विवशता को बाहों में उठाऊंगा। और अब रुख करते हैं खेल की दुनिया का। 65 किलो भार वर्ग में दुनिया के नंबर वन पहलवान भारत के बजरंग पूनिया को पिछले दिनों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। हालांकि इसी महीने शुरू होने जा रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की तैयारियों के कारण इन दिनों वो रूस में है। वो इस पुरस्कार को पाकर खुश हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने और सबसे पहले सम्मान समारोह में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल किया।
नमस्कार, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया तो अच्छा लगा, और इसमें दुख की कोई बात नहीं है कि भाई मैं अवार्ड नहीं लेने के लिए आया, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक के लिए पहला टूर्नामेंट है क्वालिफाई का, तो वो ज्यादा जरूरी है इससे। और देशवासियों का मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इतना सम्मान दिया है।
इस समय आप अपने वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर एक पहलवान है, तो कितनी उम्मीदें करें?
पिछले साल भी मैंने 65 में सिल्वर मेडल जीता था और 2013 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो 60 केजी में जीता था मैंने। तैयारी मेरी बिल्कुल अच्छी है और मेरी कोशिश है कि मैं अब की बार मेडल का रंग चेंज करके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करूं। नंबर 1 या नंबर 10 इसमें कोई महत्व नहीं रखता, बस इसमें एक सीडिंग मिलती है वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो टॉप 4 होते हैं उनको। अगर आपको चैंपियन बनना तो आपको सबको हरा के चैंपियन बनना पड़ेगा।
आपको लगता है कि ना सिर्फ आप जीते बल्कि आपके साथ साथ भारत में कुश्ती के लिए कुछ ऐसे दिन भी आए जबकि कुश्ती में और ज्यादा पदक आए, जैसे लंदन ओलंपिक्स में सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने पदक जीते थे।
पिछले साल एशियन गेम्स हुए थे जिसमें भारत ने इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, तो उसको एक मैं रेसलिंग की नहीं सभी गेमों की बात कर रहा हूं जो ओलंपिक में गेम है, उसमें हमारे बहुत सारे मेडल है जो अभी नए उभरते हुए हमारे खिलाड़ी है जो मेडल की होप है ओलंपिक में। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार ओलंपिक में भी हम इतिहास रचेंगे, सबसे ज्यादा मेडल जीतेंगे, आज तक जितने भी हमने मेडल जीते उनसे ज्यादा जीतेंगे। तो रेसलिंग में भी आप अब की बार पहले से 2 मेडल आए थे, 2012 में 16 में 1 मेडल आया था, रेसलिंग में अब की बार 2 या 3 मेडल हम जरूर लेके आएंगे।
ये बात सच है कि पिछली बार भी साक्षी मलिक ने कुश्ती में पदक दिलाया, इसके अलावा बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने पदक दिलाया। इससे पहले जब लंदन में काफी पदक आए थे तब ऐसा लगा था कि अब भारत खेलों की दिशा में सही जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ओलंपिक्स में अधिक से अधिक पदक आए इसके लिए हमें एक अलग तरह का सिस्टम बनाना होगा?
2 साल से आप गेमों को उठा के देखिए, हम हर गेम में मेडल जीत रहे जिनमें हम पहले पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते थे, उनमें हम मेडल जीत रहे हैं। अब तो भारत सरकार ने जो खेल नीति बनाई, एक स्कीम बनाई है जो टॉप स्कीम बनाई है, स्पॉन्सर हैं और फेडरेशन है, जैसे हमारी रेसलिंग फेडरेशन है उसमें सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बहुत चीजें बदली हैं पहले से कि भाई हम और अच्छा कर सकते हैं। और 2018 के एशियन गेम्स में आप ये देखिए ना, इतिहास में हमने आज तक इतने मेडल नहीं जीते थे जितने हमने पिछले एशियन गेम्स में जीते 18 में, क्योंकि इतना आसान नहीं है ओलंपिक में मेडल जीतना, पर खिलाड़ियों के हौसले भी बुलंद है। सबकी सोच ये है कि भाई जो भी खेलने के लिए जाता है वो ये सोच के जाता है कि भाई मैं मेडल जीत के लेके आऊं देश के लिए, सोचेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कहां से।
बजरंग जी, पिछली बार विश्व चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में सिर्फ आपका पदक आया था जो रजत पदक था 65 किलो भार वर्ग में, महिला वर्ग में 57 किलो भार वर्ग में पूजा ढांडा ने कांस्य पदक जीता था, तो आपकी वेट कैटेगरी में कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे आपको कड़ी टक्कर मिले?
हाँ बिल्कुल, पिछले साल हमारे 2 मेडल थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अगर आप देखें ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में सिर्फ 16 पहलवान आएंगे, पहले 20 आते थे, क्वालिफिकेशन कम कर दिए हैं, और विश्व चैंपियनशिप में 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। विश्व चैंपियनशिप में हर खिलाड़ी भाग लेगा हर देश का, तो विश्व चैंपियनशिप ओलंपिक अगर टूर्नामेंट देखेंगे तो ज्यादा टफ टूर्नामेंट है, क्योंकि उसमें हमें 5-6 बाउट लड़नी पड़ती है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और ओलंपिक में हमें 4 बाउट लड़नी पड़ती है। और ये मानिए एक अच्छा खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाई करने से रह भी जाता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। रेसलिंग में 14 या 15 मेडल आए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज तक के इतिहास में, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसको हम कमजोर मान सकते हैं। मैं किसी एक खिलाड़ी का नाम नहीं बता सकता कि भाई वो खिलाड़ी अच्छा, क्योंकि 65 किलो कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसमें नेचुरल एक आदमी में नेचुरल वेट होता है 65-74 तक, तो 74 और 65 ऐसी कैटेगरी जिसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कोई भी किसी को हरा सकता है, दिन अच्छा होगा भगवान जिसका साथ देगा वो चैंपियन बन के निकलेगा।
बजरंग, आपकी कुश्ती में कितना बड़ा परिवर्तन आया जब से योगेश्वर दत्त आपके साथ जुड़े, और उनके अलावा आपके कौन से ऐसे गुरु खलीफा हैं जिन्होंने आपके कुश्ती करियर में बहुत मदद की?
देखिए मेरी कुश्ती में काफी चेंज हुआ है 1.5-2 साल से, जब से मेरे पास फॉरेनर कोच आया है। मैं 2008 में योगेश्वर भाई के साथ रहने लगा था, तो उनसे हर समय मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और मेरे गुरु है रामफल कोच हैं, ज्यादातर बाहर ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसलिए मुझे फॉरेनर कोच की ज्यादा जरूरत है, लैंग्वेज का, एक खाने पीने का, तो हर तरीके से अगर आप देखेंगे तो कोच हैंडल कर सकता है।
बजरंग पूनिया से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त। चलते चलते आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जमैका में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का पहला सत्र प्रगति पर है और अब तक वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट खोकर 104 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत की पहली पारी 416 रनों पर समाप्त हुई थी। और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत पर चिंता जताई है। पाकिस्तान के ईसाई महिला आसिया बीबी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील की है कि वो उनके जैसे पीड़ितों की स्थिति को नज़रअंदाज न करें। हांगकांग में लोग समर्थक शहर के हवाई अड्डे के संचालन को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों का कहना है कि सऊदी के नेतृत्व में गठबंधन फौजों ने एक डिटेंशन सेंटर पर हवाई हमला किया जिसमें 60 कैदियों की मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज कार्यक्रम का संपादन किया रेहान फजल ने, स्टूडियो संभाला कपिल देव सिंह ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।